लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। अपने पशुओं की दशा का ध्यान रखो, अपने झुंड की देखभाल करो, क्योंकि धन सदा के लिए बना नहीं रहता और मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं टिकता। जब घास कट गई और नई घास उगती है, जब पहाड़ों पर की वनस्पति बखार में एकत्र की गई है, तो तुम्हें अपनी भेड़ों से कपड़े और अपने बकरों से खेत खरीदने का दाम मिलेगा। तुम्हारे पास बकरियों का पर्याप्त दूध होगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तृप्ति और तुम्हारी दासियों का भरण पोषण हो जाएगा। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय के अंतिम यानी कि 23 से लेकर 27 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। जीवन उपयोगी परामर्शों का सिलसिला जारी रखते हुए इन पदों में भी सूक्ति ग्रंथ का लेखक अपने कामों में मेहनत का आदेश देता है। हालांकि यह आदेश किसानों, चरवाहों और मवेशियों का व्यापार करने वालों के लिए है, इसे अन्य सभी वैध व्यवसायों पर लागू किया जा सकता है। चाहे हमारा काम घर के अंदर हो या बाहर, हमारा ध्यान अपने काम में लगना चाहिए और आलस्य में जीवन यापन नहीं करना चाहिए। वित्तीय, हमें अपने कामों को उचित रीति से और पूरी तरह सोच समझ कर करना चाहिए। तृतीय, अपने कामों की देखभाल हम खुद करें, इन्हें हम अन्यों के भरोसे न छोड़ें, अपनी आंखों से अपने झुंड की स्थिति का निरीक्षण करें। चौथा तथ्य यह कि हम अपने काम के प्रबंधन में विवेकशील रहें और विचारशील रहें, चीजों की स्थिति को जानें और उन पर अच्छी तरह से ध्यान दें, ताकि कुछ भी न खोएं, कोई भी अवसर हाथ से न निकलने दें। फिर 24वें पद में लेखक सांसारिक धन की अनिश्चितता को रेखांकित करता है, क्योंकि धन हमेशा के लिए नहीं होता। वही टिकाऊ होता है जो हमारे पास है, यानी कि झुंड, गाय बैल, जिनसे हमारी जीविका चलती है। यही अहम है, प्रमुख यही है, जो एक क्रम में हमेशा के लिए रहेंगी। शायद राजघराना आपके परिवार के लिए उतना पक्का न हो जितना कि आपके भेड़, बकरियां या गाय बैल। तथापि सूक्ति ग्रंथ का लेखक चेतावनी भी देता है कि यह धन भी खत्म हो सकता है, यदि इनकी अच्छी तरह देखभाल न की जाए। वस्तुतः इन पदों में लेखक ने यही कहना चाहा है कि परिवारों के स्वामियों को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों के लिए भी प्रबंध करना चाहिए, तथा यह भी देखना चाहिए कि उनके सेवकों को उचित भरण पोषण मिल सके। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सादा भोजन, सादा वस्त्र, किंतु उच्च विचार। लेखक कहता है, यदि तुम अपने मेमनों के ऊन से बने घर के बुने हुए कपड़े पहनते हो तथा बकरियों के दूध से तृप्त होते हो, तो अपने आप को धन्य समझो, जो तुम्हारे घराने के भोजन और तुम्हारी दासियों के भरण पोषण के लिए काम आता है, वही तुम्हारा भोजन हो। दूर की कौड़ी तथा महंगी खरीदी हुई स्वादिष्ट चीजों की लालसा मत करो। अस्तु, व्यक्ति अपने काम धंधों के प्रति सावधान रहे, सत्यनिष्ठ रहे तथा अपने सामर्थ्य के अनुकूल मेहनत करे, ताकि उसका, उसके परिवार का और उसके लिए काम करने वालों का भरण पोषण उचित रीति से हो सके। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय पर गौर करें। इस अध्याय में लेखक यानी कि राजा सुलेमान के कथनों की एक लंबी सूची जारी की गई है, जिनमें कई प्रत्यक्ष विरोधाभास शामिल हैं। इसमें शासकों और नेताओं के कई संदर्भ भी मिलते हैं। 28वां अध्याय धार्मिकता, न्याय, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के बारे में निर्देशों से शुरू होता है। दोषी अंतरात्मा दोषी कार्यों की ओर ले जाती है, जबकि स्पष्ट विवेक आत्मविश्वास की ओर, जैसा कि अन्य नीति वचनों में कहा गया है। नैतिक अखंडता भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। सुलेमान यह भी चेतावनी देते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ईश्वर की उपेक्षा करते हैं, वे वास्तव में प्रार्थना करने का प्रयास करते समय उसे क्रोधित करते हैं, मानो ईश्वर उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए बाध्य हैं। इस अध्याय के दूसरे भाग में अधर्मी शासकों के प्रभाव और अराजक नेतृत्व तथा सांस्कृतिक पाप के बीच पारस्परिक संबंध का उल्लेख मिलता है। दुष्ट सरकारें भय और विच्छिन्नता को प्रेरित करती हैं, किंतु जब दुष्ट शासकों को नष्ट कर दिया जाता है तो राष्ट्र जश्न मनाता है और भलाई की वृद्धि होती है। इस अध्याय के अन्य नीति वचन लालच के खतरों के बारे में है। एक बार फिर लेखक भौतिक धन का पीछा न करने का परामर्श देता है, क्योंकि आम तौर पर यह भयानक परिणामों की ओर ले जाता है। 28वें अध्याय के प्रथम चार पद इस प्रकार हैं: दुष्ट भाग जाता यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता है, किंतु धर्मी सिंह शावक की तरह आश्वस्त रहता है। फिर लेखक कहता है, विद्रोही देश में बहुत से शासक होते हैं। समझदार और अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यवस्था दीर्घ काल तक सुदृढ़ रहती है। दरिद्रों का शोषण करने वाला शासक फसल नष्ट करने वाली मूसलाधार वर्षा जैसा है। संहिता का परित्याग करने वाले दुष्टों की प्रशंसा करते हैं, जबकि संहिता का पालन करने वाले उनका विरोध करते हैं। श्रोताओं, दुष्ट तरीकों से चलने वाले लोगों को लगातार भय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी खुद के दोष और पाप के प्रति जागी चेतना उन्हें आतंकित करने लगती है। इसीलिए जब कोई उनका पीछा भी नहीं करता, तब भी वे भागने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वे सहज होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें गुप्त रूप से भय बना रहता है। वे जहां भी जाते हैं, उन्हें उनका पाप काटता है, जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ के 53वें भजन के 5वें और 6वें पदों में भजनकार कहता है, क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। जहां वे थर थर कांपने लगे थे, वहां भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकार श्रोताओं, दुष्ट भाग जाता यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता, किंतु धर्मी सिंह शावक की तरह आश्वस्त रहता है। इस पद का अर्थ यही है कि जिन्होंने ईश्वर को अपना शत्रु बना लिया है, जो ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपने दुख दर्दों के लिए ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं, वे मानो पूरी सृष्टि को अपने साथ युद्ध करते हुए देखते हैं। सारी दुनिया उनके लिए दोषी होती है। ऐसे लोग कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं होता, कोई साहस नहीं होता, बल्कि न्याय की भयभीत प्रतीक्षा रहा करती है। श्रोताओं, पाप और दुष्टता मनुष्य को कायर बना देती है, जैसा कि अय्यूब के ग्रंथ के 15वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, वेदना और विपत्ति उसे आतंकित करती हैं। वे आक्रामक राजा की तरह उस पर टूट पड़ती हैं, क्योंकि उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। अस्तु श्रोताओं, ईश्वर पर श्रद्धा रखें, उनमें अपना विश्वास कदापि न खोएं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विश्व संतुलन के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने प्रतिभागियों को साहस के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि आशा विश्व के लिए शांति में परिवर्तित हो सके। पोप फ्रांसिस ने कहा, विश्व संतुलन के लिए मंच की खुली, बहुलवादी और बहुविषयक होने की आकांक्षा इससे आज के पुरुषों और महिलाओं के दिलों को छूने वाले कारणों पर गौर करने की क्षमता देती है। 28 से 31 जनवरी तक क्यूबा के हवाना में आयोजित सम्मेलन के प्रतिभागियों को प्रेषित संदेश में पोप ने जयंती वर्ष की विषय वस्तु आशा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ख्रिस्तियों को यीशु मसीह के प्रति विश्वास और प्रेम प्रदान करती है तथा उन्हें उन संघर्षों में भाग लेने के लिए तैयार होने की अनुमति देती है जो प्रत्येक व्यक्ति और समाज के जीवन के हिस्से हैं। जयंती वर्ष की अपनी घोषणा को याद करते हुए पोप ने समय के संकेतों में आशा के संकेतों की ओर इशारा किया तथा प्रतिभागियों को दुनिया में अच्छाई को पहचानने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे बुराई और हिंसा से पराजित मानने के दबाव में न आएं। उन्होंने कहा कि यह धारणा हमें हिंसा के तर्क को छोड़ने के लिए आमंत्रित करता है और हमें वार्ता तथा संवाद और लोकतंत्र के लिए काम करने हेतु प्रतिबद्ध करता है, ताकि साहस और रचनात्मकता के साथ स्थायी शांति के लिए जगह बनाई जा सके। पोप ने स्पष्ट किया कि इसके लिए जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे सभी लोगों को भविष्य की ओर आशा के साथ देखने में मदद करना आवश्यक है, जिसमें बदले में उन पहलों और रास्तों का समर्थन करना शामिल है जो गरीबों और बहिष्कृत लोगों को खुद पर और समाज में आत्मविश्वास हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, गरीब और बीमार, युवा और बुजुर्ग, प्रवासी और विस्थापित, यहाँ तक कि अपनी स्वतंत्रता से वंचित लोगों को हमारे चिंतन के केंद्र में होना चाहिए। पोप ने कहा कि ख्रिस्त की चेतावनी, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया, ख्रिस्तियों को निमंत्रण देता है कि हम ईश्वर की छवि को हर पुरुष और स्त्री में पहचाने, जो मानव परिवार में भाई और बहन तथा ईश्वर की संतान कहलाते हैं। अंत में संत पापा ने कहा, आइए हम प्रेम से यह सबक सीखें, ऐसी आशा का निर्माण करें जो यह प्रयास करे कि सभी को वह मिले जो आवश्यक है, दूसरों को गरीबों के साथ बांटना सिखाएं तथा दूसरों का उदारता पूर्वक स्वागत करने के लिए अपने आप को खोलें। पोप फ्रांसिस ने स्पेन के सेमिनरी छात्रों एवं प्रशिक्षकों से मुलाकात करते हुए भावी पुरोहितों से आग्रह किया है कि वे जिनकी सेवा करते हैं उनके दर्द से प्रभावित हों। अक्टूबर 2024 के अंत में मूसलाधार बारिश ने स्पेन के शहर वालेंसिया में बाढ़ ला दी थी, जिससे लगभग 230 लोगों की मौत हो गई और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ। हजारों स्वयंसेवक और गैर लाभकारी संगठन स्पेन के इस बड़ी घातक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जुटे। 3 माह बाद बृहस्पतिवार को वालेंसिया महाधर्म प्रांत के सेमिनरी छात्रों एवं प्रशिक्षकों तथा धर्माध्यक्षों से पोप फ्रांसिस ने मुलाकात की। संत पापा ने कहा, तूफान सिर्फ एक असामान्य घटना नहीं थी जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि फिर कभी ना हो। यह हर इंसान के अनुभव का एक उदाहरण है जब वह किसी नुकसान, अकेलापन, विस्थापित होने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत का सामना करता है। पोप ने कहा कि पुरोहितों की भूमिका टूटे हुए दिलों को जोड़ना और रोजमर्रा के जिंदगी की बड़ी और छोटी आपदाओं के बीच लोगों को आध्यात्मिक सहारा देना है। उन्होंने स्वीकार किया कि बाढ़ के बाद क्रिसमस मनाते समय वालेंसिया के निवासियों ने जो दर्द महसूस किया उसके बारे में सोचते हुए उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल लगा। उन्होंने कहा, आपका दर्द और शोक अपनी कठोरता के बावजूद हमें आशा के किरण दिखाता है, क्योंकि हमें सबसे निचले स्तर पर पहुंचने और वह सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होने के बावजूद हमें सहारा देता है और हमें उससे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पोप ने आग्रह किया कि लोगों को अंधेरे का सामना करने के लिए अकेला ना छोड़ा जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि तूफान के बाद इतने सारे स्वयंसेवकों और कैथोलिक कलीसिया का काम ईश्वर की कोमलता की अभिव्यक्ति है। पोप फ्रांसिस ने बतलाया कि आशा आशावाद नहीं है जो केवल एक सतही रवैया है, जबकि आशा हमें खाली वाक्यांशों से आगे बढ़कर गहरे अर्थ की खोज करने के लिए कहती है। उन्होंने कहा, हमारी आशा का नाम है यीशु, ईश्वर जो हमारी मिट्टी से घृणा नहीं करते और जो हमें मिट्टी से बचाने के बदले हमारे लिए मिट्टी बन गए। इस तरह हर एक पुरोहित एक दूसरा ख्रिस्त बनने के लिए बुलाया जाता है, लोगों के रुदन में मिट्टी बनकर एक दूसरा ख्रिस्त बनने के लिए। उन्होंने कहा, जब आप टूटे हुए लोगों को देखते हैं, क्योंकि वालेंसिया में ऐसे टूटे हुए लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को टुकड़ों में खो दिया है, उन्हें अपने हिस्से अपने टुकड़े दें, ठीक वैसे ही जैसे ख्रिस्त पौत्र बलिदान में करते हैं। पोप फ्रांसिस ने तिराना के महाधर्माध्यक्ष अनास्तास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अल्बानिया के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। अल्बानिया के ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में कोरका लोकुम टेनेंस के महामहिम जोन को प्रेषित संदेश में पोप ने वहां के सिनेट सदस्यों, पुरोहितों, मठवासियों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों को महाधर्माध्यक्ष अनास्तास के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया है। संत पापा ने लिखा, अल्बानिया के ऑर्थोडॉक्स समुदाय का विश्वास निश्चित रूप से हमारे प्रिय भाई के जीवन में सन्निहित था, जिनकी उत्साही प्रेरितिक सेवा ने लोगों को राज्य द्वारा लगाए गए नास्तिकता और उत्पीड़न के वर्षों के बाद अपनी समृद्धि और सुंदरता को फिर से खोजने में मदद की। संत पापा ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, अब जबकि उनका सांसारिक जीवन समाप्त हो गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दया से वे उन सभी विश्वासियों एवं पुरोहितों के साथ जिन्होंने हर जगह और हर समय लोगों के लिए उद्धार के संदेश की घोषणा की है, हमेशा पौत्र त्रित्व की स्तुति करें। देश में तख्तापलट के 4 साल बाद एड टू द चर्च इन नीड ने 1 फरवरी को म्यांमार में शांति के लिए 24 घंटे प्रार्थना का आयोजन किया है। शनिवार 1 फरवरी को दुनिया भर के लोग एक साथ मिलकर एकजुटता और आशा की भावना के साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।